ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि यहाँ पर अभी हिंदी में पुरंजन उपाख्यान के ऊपर प्रवचन चल रहा है। पुरंजन उपाख्यान हम सभी पर लागू होता है। हम सभी को उपदेश देने के लिए ही यहाँ पर नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान प्रारंभ किया। उपाख्यान के माध्यम से व्यक्ति में सद्बुद्धि आ जाए और असत संग का त्याग कर केवल भगवत संग को प्राप्त कर ले, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान लोक प्राप्त करे। इस प्रकार से इसके उद्देश्य को लेकर के श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ पर अपने तात्पर्य लिखे हैं। वस्तुतः इन श्लोकों पर कोई भी तात्पर्य नहीं लिखता है, ना किसी प्रकार की कमेंट्री होती है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को अवसर प्रदान किया। यदि वो तात्पर्य नहीं लिखते तो कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं। ये बड़ा सूखा विषय है, क्योंकि ये इसमें उपमाएँ बहुत सारी दी गई हैं, सीधे सीधे नाम नहीं बताते हैं। जैसे जीवात्मा है, वो पुरंजन है, अविज्ञात नामा उसका मित्र है परमात्मा, इस प्रकार की बहुत सारे उनकी उपमाएँ दे करके उनको यहाँ पर बोध कराया गया है। तो यहाँ पर अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं 28वां अध्याय, जिसका नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। और आज श्लोक है 12वां, जो मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। तस्याम संदह्यमानायाम सपौरः सपरिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। तस्यां संदह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यतसान्वयः तस्याम उस पुरी के संदह्यमानायाम अग्नि में प्रज्वलित होने पर सपौरः समस्त पुरवासियों सहित सपरिच्छदः समस्त नौकरों तथा भृत्यों सहित कौटुंबिकः अनेक संबंधियों वाला राजा कुटुंबिन्या अपनी पत्नी सहित उपातप्यत उस अग्नि का ताप सहने लगा सान्वयः अपने अनुचरों सहित। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। तात्पर्य, शरीर के अनेक भाग होते हैं, जैसे इंद्रियां, अंग, त्वचा, पेशियां, रक्त, रस, और जिन्हें यहाँ पर अलंकारिक ढंग से पुत्र पौत्र नागरिक तथा नौकर चाकर कहा गया है। जब शरीर पर विष्णु ज्वार का आक्रमण होता है तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। दरअसल मृत्यु के समय मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वह जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। ये सब प्रकृति के माध्यम से भगवान के वश में हैं। मूर्ख व्यक्ति इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं। उन्हें भविष्य की चिंता है, किंतु वे जन्म जरा रोग तथा मृत्यु की स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ भी न जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता रहता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदां तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनय स्थितस्य स मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्यां संदेह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत्सान्वयः। तो आप लोग अभी तक यहाँ श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार पहले तो कालकन्या जरा ने पुरंजन पर आक्रमण किया, अब उसका भाई भी आ गया, अब यहाँ पर उसका समस्त देह जलने लगा, मतलब मरने की अवस्था आ गई, और साथ में जब इसका देह जला तो इसके जितने परिजन हैं पुत्र पौत्र आदि, तो यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि का तात्पर्य है शरीर के अंग। शरीर के अंग जब शरीर नष्ट होगा तो शरीर के अंग भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस श्लोक में और यहाँ पर इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विषय में बतलाया। आप लोग पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ लेक्चर किया था तो जरा के ऊपर आपको बताया कैसे व्यक्ति पर वृद्धावस्था अटैक करती है और उसकी मति छिन्न कर डालती है। अब यहाँ पर मृत्यु की अवस्था का वर्णन चल रहा है कि अब पुरंजन का संपूर्ण देह जलने लगा है, उसके जितने परिजन हैं सब जलने लगे हैं, अब वो अपने आप को बचा नहीं सकता है। वस्तुतः इस संसार में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति सभी को मरते हुए देखता है लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं भी मरूंगा। सोचता है कभी किसी के यहाँ शव को दहन करने के लिए जब व्यक्ति जाता है तो उस समय कुछ क्षण के लिए उसका ऐसा विचार आ जाता है कि मुझे भी मरना पड़ेगा। मनुष्य को ज्ञान चार अवस्थाओं में होता है और उसके पश्चात विलुप्त हो जाता है। माँ के गर्भ में, रुग्ण अवस्था में, श्मशान घाट में और मृत्यु के सब कथा में। तत्व ज्ञान की जब कहीं कथा चले, बड़े महापुरुषों से श्रवण हो, तब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए ज्ञान आ जाता है, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके पश्चात फिर बाहर निकले, कुसंगति में आए और वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। रोग अवस्था में व्यक्ति को जब सहायता कहीं से भी नहीं प्राप्त होती है तब पर भी उसको थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, और जैसे ही ठीक हुई बुखार सर्दी खांसी या बड़ी सी बीमारी, उसके बाद फिर उसी तरह से वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, भूल गया दुखों को। दुखों को विस्मरण कर देना ही तत्व ज्ञान में न बढ़ना है। हमको बार बार दुख भूल गए, जिस समय दुख हुआ उस समय भगवान भी थोड़े समय के लिए स्मरण आए कष्ट के साथ साथ, बाद में फिर विस्मरण हो गया। श्मशान घाट में किसी को जलाने जाते हैं उस समय भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, देखो इतने मर गए मुझे भी मरना पड़ेगा। माँ के गर्भ में भी जीव को थोड़े समय के लिए ज्ञान आता है, वैसे तो समस्त जीवों को ऐसा तत्व ज्ञान नहीं होता जैसे भागवत में वर्णन किया है, लेकिन फिर भी तत्ववेत्ता लोग कहते हैं कि नहीं, जीव सभी जीवों को होता है अंतःकरण में ज्ञान उसको जब माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन जीव गोस्वामी बोलते हैं सभी जीवों को ज्ञान नहीं होता है, जो कुछ तत्वज्ञानी जीव योगी लोग हैं उनको ज्ञान होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए भी उसको अनुभूति तो होती है कि यहाँ कष्ट है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को ऐसा ज्ञान होता है चार अवस्थाओं में, लेकिन फिर भूल जाता है। यदि व्यक्ति को मृत्यु का यदि भय हर समय लगा रहे तो समझ आएगा, सतर्क रहेगा कि अब तो भजन करना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित नहीं है। सभी दुनिया के कार्य निश्चित हैं, मृत्यु का निश्चय नहीं है किसी को भी। चलो आप कुछ कार्य को तो निश्चय कर भी लेते हैं, लेकिन मृत्यु का निश्चय कोई भी नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा सुंदर व्यक्ति हो, कोई भी हो, सब कुछ यहीं रह जाता है। मृत्यु इतनी कठोर चीज है और इतनी निर्दयी है कि आपका कहीं पर भी कुछ भी कार्यकलाप फंसा हुआ है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी बेटी की शादी हो रही है कि आपके बच्चा होने वाला है, सभी अवस्थाओं में, सुख की अवस्था में भी, दुख की अवस्था में भी, जैसे भी आप हैं, मृत्यु आपको छोड़ेगी नहीं। इतनी भयंकर होती है हम लोगों की मृत्यु, और इसी कारण से मृत्यु इतनी भयावह है, इसीलिए कोई मरना नहीं चाहता। 10,000 बिच्छुओं काटने के बराबर पीड़ा होती है, वो पीड़ा का अनुभव जीव को रहता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति संसार का मरना नहीं चाहता, कोई भी प्राणी मनुष्य क्या इतर योनियां भी कोई मरना नहीं चाहते, क्योंकि उसको स्मरण रहता है उस भय का। नहीं तो क्या दिक्कत है, कोई चींटी को मारने जाओ साधारण रूप से उसको मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं मरती है। क्यों? उसको पूर्व मृत्यु का आभास है, इसलिए उसको भय है, मरने का ही भय है, और कोई भय किसी को नहीं है, केवल मृत्यु का भय है। यदि इस मृत्यु को समझ जाए जीव तो कार्य बन जाएगा उसका, आत्म साक्षात्कार के पथ में आगे आ सकता है। वस्तुतः जो मृत्यु है, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया गया है मृत्यु का। वेद तो कहता है, ऋग्वेद की अलग परिभाषा है मृत्यु की, महाभारत में अलग परिभाषा है, भागवत में अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन जो भी हो सब आत्म साक्षात्कार करा करके भगवान की भक्ति कराने की ही बात को कहते हैं। जैसा कि महाभारत में विदुर से जब धृतराष्ट्र ने पूछा को वही मृत्यु, ये मृत्यु क्या है, तो विदुर ने बोला इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, मैं छोटा हूँ, मैं शूद्रा से उत्पन्न हूँ, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ऐसा करता हूँ कि एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि हैं, सनत सुजात नाम है उनका, उनको बुलाकर लाता हूँ, वो आपको ज्ञान देंगे। तो सनत सुजात ऋषि धृतराष्ट्र के पास आकर कहते हैं, एक ही आंसर दिए कि मृत्यु क्या है। कहते हैं प्रमादो वही मृत्यु, कि जो आलस्य है प्रमाद है वही मृत्यु है। मतलब सतर्क ना रहना कि अब मुझे भजन करना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस प्रकार के भौतिक वस्तुओं में आसक्त होकर के ही बने रहना, प्रमादी रहना ही वो कहते हैं मृत्यु है। वेद की अलग परिभाषा है, ऋग्वेद में लिखा है कि आचार्यो वही मृत्यु, कि आचार्य ही मृत्यु है, जो हमारे गुरु हैं आचार्य वही मृत्यु है। क्यों? क्योंकि जीव उसके पास जाकर के समस्त कर्मों का त्याग समर्पण जब अपने आप कर देता है तो गुरु उसकी मृत्यु कर देता है। मृत्यु मतलब उसके समस्त कर्मों का समापन करके उसको एक नया जीवन प्रदान करता है, वो भी सही है। लेकिन भागवत में कपिल देव ने जरा अलग परिभाषा दिया, कहते हैं कि मृत्यु कुछ अलग चीज है। कहते हैं कि योपयाति सनैर माया योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेत आत्मनो मृत्युम त्रिणैः कूपमिवावृतम्। तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में 40वां श्लोक है, उसमें कपिल देव कहते हैं कि या उपयाति सनैर माया योषित देव विनिर्मिता, जो स्त्री रूपी जो माया है वस्तुतः वो माया है। ताम ईक्षेत आत्मनो मृत्युम, व्यक्ति को स्त्री को अपनी मृत्यु समझना चाहिए। तो केवल स्त्री मृत्यु है, पुरुष अमर थोड़ी ना है। स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री है, क्योंकि दोनों आपस में फंसे रहते हैं तो इसलिए आत्म उद्धार कर नहीं पाते। स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, तो दोनों के लिए उपलक्षण से ऐसे कह दिया कि स्त्री का नाम लिया लेकिन पुरुष को भी समझना है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो कपिल देव कहते हैं कि वो उसके लिए वो कैसी है वो स्त्री रूपी जो मृत्यु, कहते हैं त्रिणई ही कूपम एवावृतम। त्रिणई ही माने जैसे तृण घास से आवृत, बहुत गहरा कुआं हो और उसमें घास लगाई हो, तृण उगाए हो, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और उस घास के लालच में लोभ में बकरी या कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर जाए उसको लगेगा अरे कुछ नहीं घास है, ज़्यादा गहरा नहीं होगा, पैर रख सकता हूँ। अब बकरी सोचे कि नहीं ये घास बढ़िया से चर लूँगी मैं, या कोई भी पशु है, तो जैसे ही उसको खाने जाएगा वो नीचे चला जाएगा, मतलब अब उसका शरीर छूट जाएगा, क्योंकि वो तो गहरा कुआं है, ऊपर से घास उगाई है। तो इसलिए इसको मृत्यु मानना है, ऐसा कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि याम वही मन्यते पतिम, कहते हैं जिसको, अब ये पुरुष क्या करता है या स्त्री क्या करती है उसका एक नेचर बताया। कहते हैं कि जिसको ये स्त्री, ये जो पुरुष जिस स्त्री के पीछे जाकर के घूम करके पूरी जिंदगी प्रती जब कर देता है और धन उसके लिए सब कुछ लुटा डालता है, तो उसके ही स्मरण करते करते जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो स्त्रीत्वम कहते हैं, स्त्रीत्वम स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेता है। और जब स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेता है तो उससे क्या होता है, मान लो पुरुष है, स्त्री का ध्यान करते करते वो शरीर छोड़ दिया आया स्त्री पुरुष का, तो जब उसको पुरुषत्व की स्त्रीत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो अब वो जो माया निर्मित जो भगवान के द्वारा जो एक और पति है, अब उसको समझेगा कि ये मेरा सब कुछ है। अब वो पुरुष को ही सब कुछ समझे, अपना धन पुत्र आदि जो भी है सब उसी से अब उसकी संतुष्टि होगी, ऐसा मानने लगता है जीव। जो पहले पुरुष था स्त्री में आसक्त हुआ, अब स्त्री बना तो फिर पुरुष को चाहने लगा, हुई अब पुरुष को सब कुछ मानने। कहते हैं कि नहीं ऐसे में काम, कहते हैं आगे उसके बताते हैं कपिल देव 40 41 42 श्लोकों में, कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है कि मृगयोर जैसे जंगल में जो लुब्धक होता है मृगों को मारने वाला हत्या करने वाला, वो क्या करता है, वो उनको मारने के लिए वो कुछ सुरीले संगीत गाता है, अनेक कुछ वाद्य यंत्र बजाता है मृगों को पकड़ने के लिए, और बाद में क्या होता है कि वो उसी में ही फंस जाता है, जो मृग है वो उसकी आवाज़ को सुन करके और उसमें फंस जाता है। ऐसे जीव है पत्नी पुत्र आदियों का पोषण करते करते उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी मृत्यु आ गई है और ये मेरे मृत्यु के रूप हैं। हिरण को जैसे पता नहीं चल पाता है, तो कहते हैं आगे उसको एक्चुअल में मृत्यु की सही परिभाषा दिया कपिल भगवान ने 3:31-44 में, कहते हैं कि जीवो, कहते हैं जीवो देहस्य अनुगह देहो भूत मात्रेन्द्रिय मनः, ये जितना भी हमारा देह है शरीर, किसी की वस्तुतः मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु नाम किसका है, तो कहते हैं कि ये जो हमारा अंतःकरण है मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, और जो एक वासनात्मक शरीर कारण शरीर जिसको बोलते हैं, वासनात्मक शरीर कारण शरीर और तीसरा ये स्थूल शरीर, इनका तीनों का जो संयोग है तन्निरोधोस्य मरणम, कहते हैं आविर्भावस्तु संभवः, कहते हैं कि इन सब का, इन तीनों का मतलब स्थूल और सूक्ष्म देहों का जो मिलन है ये जन्म है, और इनका ही विलग हो जाना ही मृत्यु है। कोई मरता है, यदि कोई मर गया व्यक्ति तो कह दिया मर गया, तो मर गया तो आत्मा तो चली गई, वो तो अजर अमर है, मरती नहीं है। जो शरीर है, ये शरीर को जब जलाया तो पृथ्वी वाला तत्व पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु, आकाश आकाश में मिल गए, तो कोई मरा कहाँ पर, फिर मृत्यु हुई किसकी, मृत्यु एक संघात की हुई। संघात समझते हैं, एक इकट्ठा हो जाना, जैसे ये माइक है, अभी इसका पूरे का नाम माइक है, अभी इसमें से इसको निकाल दें, ये पाइप निकाल दें, ये तार निकाल दें, सब निकाल दें, तो इनकी अलग अलग संज्ञा हो जाएगी और उसी का नाम कह देंगे, माइक टूट गया, नष्ट हो गया, है ना। एक मोटरसाइकिल, उसके चक्के निकाल दो, टायर निकाल दो, ट्यूब निकाल दो, नट बोल्ट निकाल दो, उसके बाद उसको कोई मोटरसाइकिल कहेगा, नहीं कहेगा, अलग अलग कहेगा। तो वस्तुतः कोई नट भी नहीं नष्ट हुआ, न ट्यूब नष्ट हुआ, न टायर, केवल अलग अलग हो गए। ऐसे ही कपिल देव बोलते हैं अपनी माता से कि वस्तुतः मृत्यु का नाम क्या है, कि इनका तत्वों का अलग हो जाना, बस आत्मा अपने स्थान पर और ये जितने सूक्ष्म और स्थूल देह है इनका अलग हो जाना आत्मा के साथ, इसी का नाम है मृत्यु। मरा कोई नहीं, क्योंकि मरेगा कौन, वो जो संघात है उसका नाश हो गया, जो इकट्ठे हो गए थे मिल गए थे उसका नाश हो चुका है बस, बाकी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जिनसे मिलकर ये पूरे 25 तत्व उनसे जो शरीर बना है वो अपने अपनी जगह जाकर पुनः मिल गए, तो नष्ट तो कोई हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ये ऐसी मृत्यु है, इसीलिए इस मृत्यु को हमने अनंत बार प्राप्त किया है, अनंत बार, लेकिन आज तक भगवान को, मतलब परमानंद को, जिस आनंद को संसार में अन्वेषण कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति आज तक लवलेस मात्र भी नहीं हुई। इसीलिए वेद कहता है कि मनुष्य देह प्राप्त करके कहता है कि इह चेद सकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद में बहुत अच्छा उपदेश दिया है, दूसरे अध्याय की छठवीं बल्ली की चौथा मंत्र है। कहते हैं कि व्यक्ति को इह चेद असकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसः, माने शरीर की समाप्ति, मतलब संघात की, मतलब मृत्यु से पहले, इसके पहले ही व्यक्ति को भगवान का ज्ञान कर लेना है। इह चेद असकत बोधुम, यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जो हो रहा है, अनंत काल से हम लोग भटक रहे हैं, अलग अलग देहों में, जैसे व्यक्ति है अलग अलग घरों में रहने जाता है, ऐसी कभी कुत्ता बिल्ली मनुष्य देह अलग अलग रह करके दो चार साल, दस साल, बीस साल, सौ साल, हजार साल, लाखों साल अलग अलग देहों में रह करके फिर वही बदल रहा है, घरों को बदल रहा है, जैसे किराएदार होता है ना, वो घरों को बदलता रहता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे ही हमारी स्थिति हो गई है। तो वेद कहता है इसीलिए कि इसके पहले समझ लो, अन्यथा ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते, अनहीं तो अनंत शरीर मिलते रहेंगे, कभी नहीं छूट पाएंगे ये सब, और अनंत दुखों को बार बार भोगते रहोगे। यही बात केन उपनिषद में दूसरे खंड के पांचवें मंत्र में भी बोला है, थोड़ा सा अलग मंत्र है। इह चेत सत्यमस्ति, कहते हैं नवेदादि न अवेदी दध महतीर विनष्टि। यदि कोई व्यक्ति शरीर को प्राप्त करके मृत्यु से पहले यदि भगवान को नहीं समझता है, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा किससे संबंध है, यदि इतना तत्वज्ञान नहीं कर पाता है तो बहुत महान विनाश है उस व्यक्ति का, क्योंकि मनुष्य देह 2.25 करोड़ वर्ष में एक बार प्राप्त होता है। बड़े विद्वानों ने ऐसा कैलकुलेशन किया अलग अलग योनियों की आयु को लेकर के, तो आया है कि 2.25 करोड़ वर्ष लगता है एक बार मनुष्य के देह तक आने के लिए। तो सोचिए 2.25 करोड़ वर्ष में जब हम पशु बन जाएंगे, मनुष्य देह से नीचे चले जाएंगे, तो कितना कष्ट होगा। इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद में रिपीट किया गया है, चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के 14वें मंत्र में, कि व्यक्ति को मृत्यु से पहले ही तत्व ज्ञान करना चाहिए, अन्यथा महान विनाश हो जाएगा उसका। विनाश मतलब यही दुखों की प्राप्ति, लेकिन कोई भी व्यक्ति केयर नहीं होता है उसके लिए, सावधान नहीं होता है। तो इसलिए ये तो वेद के उपदेश हैं, तरह तरह के अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हमारी अवस्था क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे को भगवान ने दो चार दे दिया है, पत्नी पुत्र माता पिता और भाई बंधु, बस इनके साथ रहकर इनको खिला पिला करके जीवन काट लो। प्रहलाद महाराज तो इतना शोक व्यक्त करते, कहते हैं इन लोगों के लिए, सब हम सब के लिए, कहते हैं कि कुटुंब पोषण, कहते हैं कुटुंब पोषण वियन निजायुर न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः तापत्रय सर्वत्र दुखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। 7, 6, 14 में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, अब मनुष्य क्या करता है, अपनी मृत्यु को नहीं समझ पाता है, और कुटुंब पोषायन, कुटुंब मतलब अपने परिवार के पोषण करने के लिए ही निजायु, अपनी आयु को वियन, समाप्त, व्यतीत करते हुए कहते हैं न बुध्यते अर्थम, अर्थम माने जीवन का जो लक्ष्य है उसको नहीं जानता। क्यों, पत्नी तो कही केवल मेरे लिए कहो करो, बच्चा कहेगा मेरे लिए करो, माँ बाप करेंगे कहेंगे मेरी भक्ति करो, मेरे लिए करो, सब लोग अपने अपने तरफ खींचेंगे, आप किसके लिए करेंगे, और आप भी इतने दीन हो जाएंगे कि आप सोचेंगे वाह यही तो हमारा जीवन है, बेचारों को कैसे छोड़ के जाऊँ, कैसे भजन करूँ, इनके नहीं तो मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, और ऐसा अपनी आयु को समाप्त करता हुआ भी व्यक्ति प्रमादी होकर के कहते हैं कि सर्वत्र तापत्र है दुखित आत्मा। ऐसा नहीं है कि इनकी सेवा करके जीव को बहुत प्रसन्नता की प्राप्ति हो रही है, जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी दुखी हैं और जो सेवा कर रहा है वो भी दुखी है, वो तो ज्यादा ही दुखी है। तो कहते हैं सर्वत्र तापत्र है दुखित आत्मा, सब जगह उसको केवल तीनों ताप ही प्राप्त होते हैं, अब फिर भी दुखी होने के बाद भी उसको सोचता है सुख वन मन्यते ग्रही, फिर भी उसको क्या सोचता है ठीक है चलेगा, इतना तो कष्ट होना चाहिए, बिना कष्ट के सुख का अनुभव कैसे। लोग बोलते हैं बाहर कि जब तक दुख नहीं मिलेगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा, है कि नहीं, अंधेरा नहीं आएगा, अंधेरा नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश का पता कैसे चलेगा, वाह अच्छा लॉजिक देते हैं, तो रह जाओ कष्ट में फिर क्यों, जब बहुत ज्यादा कष्ट होता है तो जाते हो डॉक्टरों के पास, भगवान के पास, संतों के पास, फिर जब थक जाते हैं अपने कष्टों को हटाते हटाते तो अंत में उनको जाना ही पड़ता है कहीं किसी की शरण में, और जाते ही हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख की आवश्यकता है, इस संसार में हर व्यक्ति दुख को मिटाने के लिए ही दूसरा दुख उठाता है, यहां कोई सुख के लिए काम, शास्त्र ही कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सुख के लिए करता है दुख हो जाता है, सब व्यक्ति सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति चाहते हैं, लेकिन और गहरा विचार करें तो वस्तुतः दुख मिटाने के लिए वो एक दुख को उठाते हैं, अल्टीमेटली सुख की प्राप्ति चाहता है जीव लेकिन उसको नहीं हो रही है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अंत लाइन में कि निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः, जैसे आत्मा राम होते हैं ना अपनी स्थिति से माने भगवान की भक्ति से वो अलग नहीं होते, केवल भगवान में मन लगाए रहते हैं, और जो पारिवारिक लोग हैं गृहस्थी वो सेवा करते कहते थे ना तल्लीन हो जाता है, कहते हैं उनको एक नाम दे दिए स्वकुटुंब रामः, जैसे आत्मा राम होता है इसे स्वकुटुंब राम है, अपने कुटुंब में ही रमण करने वाला, न निर्विद्य थे उससे कभी उसको ज्ञान नहीं हो पाता, अलग नहीं हो पाता वो व्यक्ति। होता क्या है कहते एवं स्वभरणाकल्पम तत्कलत्रादयस तथा नाद्रियंते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। कपिल देव बोलते हैं 3:30-13 में कहते इस प्रकार से जो कुटुंबी व्यक्ति है एवं स्वभरणाकल्पम, जब वो व्यक्ति भरण पोषण के अयुक्त हो जाता है, मतलब अब उसके पास सामर्थ्य नहीं है भरण पोषण परिवार का करने के लिए, तो उसके जो कलत्रादया है पत्नी पुत्र आदि हैं, जब आप पत्नी को पैसा नहीं दोगे, पुत्रों को नहीं दोगे बराबर पढ़ाई लिखाई के उसके कपड़े लत्तों का, तो अपने आप आपको गाली देंगे, क्यों शादी किया था यदि खिला नहीं सकते हो तो, क्यों पैदा किया था यदि मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो, ऐसा गाली दे करके आपको अपमानित करेंगे। तो इसीलिए ये अपनी माँ को बता रहे हैं, देखिए कोई ऐसा बेटा अपनी तत्व ज्ञान, ये भागवत में ये पिता पुत्र माँ यही सब चल रहा है, फिर भी हम लोग अपने पुत्रों को ऐसा ज्ञान इस समय नहीं दे रहे हैं, उनको दूसरों का गधा बनाने के लिए कितना पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर क्या बनाएंगे, दूसरे के हाथ में बेच देंगे 30-40 लाख रुपए सालाना में, बड़ा इंजीनियर बनेगा तो बड़ा पैसा मिलेगा लेकिन रहेगा तो दास ही, चाहे किसी का दास बन जाओ और चाहे 2-4-10 दासों को पाल लो, चाहे खुद गधे बन जाओ चाहे गधों का गुरु बन जाओ, रहोगे गधे ही। तो इसीलिए ऐसा कार्य आजकल हम लोग यही सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, सोचते हैं क्या होगा इसका भविष्य, पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, इतना चिंतित है। जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाए यदि तो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है बात, लेकिन हमको उसमें भय है, बैलेंस बनाने का बहुत प्रयास करते हैं, बैलेंस नहीं हो सकता है, भक्ति और कामना दोनों सूर्य और अंधेरे के समान है, इसलिए दोनों साथ में नहीं हो सकता है। हम लोग सोचते हैं थोड़ा माला वाला जप लेंगे तो हमारा घर परिवार ठीक ठीक चलेगा, कई भक्तों के ऐसी रहता है कि जब तक ठीक चल रहा है तभी तक भजन करते हैं, और जब थोड़ी घर परिवार गड़बड़ाया तो भजन भजन छोड़ देते हैं, इतने इतने सालों से जपते रहते हैं। वस्तुतः अब बताइए भगवान ने ऐसा कह दिया कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका उसको भ्रष्ट उसकी संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूँ, भागवत में 10:27-16 में इंद्र को भगवान कहते हैं कि जिस पर कृपा करता हूँ उसकी समस्त संपत्ति पत्नी पुत्र आदि सबका नाश कर देता हूं। अब बताइए कितने लोग रेडी हैं ऐसा करने के लिए? बहुत कम। जिनको सच में निष्ठा बन गई भगवान में वही है ना, और नहीं तो पत्नी बच्चे मर गए तो उसमें भी रो लिए, और भगवान कीर्तन बहुत मजा आए तो उसमें भी रो लिए, दोनों जगह रोना आ गया तो भक्ति नहीं हुई है। केवल भक्ति करना, केवल भगवान के लिए रोया जो वही वास्तव में रोया। बच्चे की विदाई कर रहे हैं उसमें भी रो लिए, और यहां भी थोड़ा रो लेते हैं, तो इससे नहीं होगा। ऐसे निर्णय वस्तुतः सब छिन जाए लेकिन फिर भी श्याम सुंदर की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, ये निर्णय हो जाना चाहिए। लेकिन ये निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हम लोग, इसीलिए हम लोग को बहुत बड़े बड़े गुरु मिले। हो सकता है महाप्रभु के समय भी रहे हों, इसलिए फिर प्रभुपाद की कृपा से फिर इस कौन में आ गए, लेकिन महाप्रभु को देख करके सोचेंगे अरे क्या ये कीर्तन करते रहते हैं पागल जैसे। हाँ, हमारी बुद्धि है, हम थोड़ी पहचानते किसी महापुरुष को, भगवान के साथ भी रहे होंगे, क्या ये लड़कियों के पीछे पीछे कृष्ण घूमता है, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे लोग थे, सबका थोड़ी ना उद्धार हो गया। तो हो सकता है हम उस समय भी रहे हों, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि भगवान ही कहते हैं कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, नहीं राजा रहे हो, तो हो सकता है। लेकिन हमारी बुद्धि यही है कि उनकी बातों को भी पूरा पूरा नहीं मानते किसी। हम लोग को ऐसे प्रभुपाद के पहले भी और भी लोगों ने उपदेश किया हो, हमने सुना ही नहीं किसी का उपदेश, फिर चांस मिला फिर इग्नोर कर देंगे। कि कोई डॉक्टर के पास आप गए और आपको दवा दिया खाने के लिए, और आप उस दवा को न खा करके अरे बड़ी कड़वी है हटाओ, नहीं हो पाएगा, धीरे से फेंक दिया, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो जितना नियम प्रभुपाद ने बनाया इसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि उतना ना करके अपनी समस्याओं में ही उलझे रहेंगे तो कभी भी प्रभुपाद का इसमें दोष नहीं है। आप प्रभुपाद के साथ आप मिल भी लेंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए जो उनका उपदेश है उसका जो पालन करता है उसकी उसको प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीवन को व्यतीत कर देता है लेकिन उसको गति नहीं मिलती है। और कैसे, कहते हैं जैसे किसान बूढ़े बैल को छोड़ देता है ना, उसको उपयोगी ना समझकर हटा देता है, ऐसे ही हमारे परिवार के लोग हमको देखेंगे कि ये तो अकल्प हो गया। ये केवल गरीबों में नहीं, हर अवस्था में, क्योंकि भाई बड़े धनी लोगों के घर में है तो ये बात, वो लोग करोड़ों की मांग करेंगे पत्नी बच्चे, सामान्य परिवार में तो हजार लाख की 100 रुपए की मांग होगी। तो सब जगह ये बात घटती है, सब जगह है ऐसी स्थिति। तो इसलिए जब व्यक्ति, इसलिए नाद्रियंते, वो आदर ही नहीं करते। यावद वित्तोपार्जन सकता तावद निज परिवारो रखता। शंकराचार्य जी तो यहां तक कहते हैं जब तक धन कमाने में व्यक्ति समर्थ है तभी तक आपके लोग आपके आगे पीछे होते हैं, समाज में लोग सलाम करते हैं, वैल्यू करते हैं, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछता यदि आपकी चमड़ी ढीली हो गई 1 रुपए नहीं कमाने के लायक है तो। इसीलिए ऐसे समाज के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्यों परेशान होना है। अब वस्तुतः देखा जाए तो हमारा इन किसी के साथ संबंध है भी नहीं। किसी के साथ संबंध है, किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, न शारीरिक रूप से है न आत्म संबंध में है, क्योंकि जो शरीर है वो भी भगवान के माया का अंश है और जो आत्मा है वो भी भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश है। तो दोनों तो भगवान के, आपका क्या है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं हाँ मेरा है, तो इसलिए ममेत ये सदग्रह है, ये मेरा और मैं, ये इतना बना लिए दो चार मेरे बाकी पराए। इनके साथ आनंद की खोज करते हैं कुछ समय, फिर थक जाते हैं, फिर नए देहों की प्राप्ति होती है, फिर उनको अपना मान लेते हैं। जीव तो जिस अवस्था में जिस योनि को जाता है उसी को अपना मानता है। इसीलिए भगवान का कहना है कि कुटुंबी को एक अतिथि के समान इस संसार में रहना चाहिए और संतों का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, भक्तों का, जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। आप सोचेंगे कि बैलेंस बनाएंगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा, भक्ति और परिवार संसार का, और जब तक बैलेंस रहेगा तब तक आप आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सूरज और अंधेरा एक साथ नहीं हो सकता है। तो आप सोचें यहाँ का भी लड्डू खाएं और वहाँ का भी खाने का प्रयास करें तो नहीं मिलेगा, 100% शरणागत होना ही पड़ेगा श्री कृष्ण के, तभी वो अपनी कृपा देंगे। तो इसीलिए ये सारी बातें हैं समझना चाहिए। व्यक्ति ऐसा तल्लीन हो जाता है कई बार अपने धन को इकट्ठा करते करते कि बुढ़ापे में मरते मरते तक उसको वो धन छूटता नहीं उसका, एक हंसी की बात आपको बताएंगे। एक व्यक्ति था, बूढ़ा सा, बहुत कंजूस था, वो 1 रुपये किसी को नहीं देता था। तो उसने क्या किया कि जब उसकी अवस्था मरने की आई तो उसके बच्चों ने सोचा मरने दो इसको, 1 रुपये नहीं देकर जा रहा है। तो उन लोगों ने भी कोई उसकी ट्रीटमेंट कराया नहीं, लेकिन उनको पता था कि इसने धन कहीं गाड़ के रखा है। इसलिए उन लोगों ने जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल से आया घर पर तो बहुत सेवा करने लगे कि हो सकता है बता दे। तो एक दिन डॉक्टर को बुला करके लाए, तो जब ये ऐसी अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ था घर पर मृत्यु सैया में, बस अंतिम चल ही रहा था, उसी समय जब डॉक्टर आया तो ऐसे ऐसा हाथ थोड़ा सा उसका हिला। तो जब उसका हाथ ऐसा हिला तो उनके बेटों ने कहा अरे लगता है अब इसकी मतलब हमारे पिताजी पुनः जीवित होकर कुछ बताना चाह रहे हैं, वहाँ कुछ है, शायद वहाँ कुछ धन गड़ा हो, तो डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला भाई देखो 5,000 का इंजेक्शन लगेगा, पुरानी बात है। तो 5,000 का इंजेक्शन जब लगाया उसको डॉक्टर को बुला करके, तो उसके पापा में थोड़ी सी जान आई। फिर डॉक्टर ने और दवा लिखा, बोला देखो और थोड़ा खर्चा होगा, और थोड़ा ट्रीटमेंट कराओ। अब वो ऐसा ऐसा हाथ कर रहा है, बार बार मर रहा है लेकिन बार बार ऐसा हाथ कर रहा है, तो बच्चों को लगा कि शायद कुछ बताना चाह रहा है। तो जब ऐसा किया तो जब ठीक हो गया तो उसका जो बड़ा बेटा खड़ा था उसको एक चांटा मारा, बोला दिखता नहीं वहां पर बकरी झाड़ू खाए जा रही है। तो झाड़ू खाए जा रही है उसको भी मर रहा है, और न तो बेटों को दिया, अभी उसको ये चिंता नहीं कि झाड़ू खा जाएगी बकरी। तो इसीलिए ऐसे ऐसे व्यक्ति भी संसार में होते हैं जिनकी अवस्था बड़ी दुर्दयनीय है, लेकिन मृत्यु को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। मृत्यु की एक और परिभाषा वस्तुतः कि मृत्यु की जन्म कैसे होता है, इसको भी भागवत में जो वसुदेव जी हैं 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 38वें श्लोक में बताया कि मृत्युर्वै जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। हमारी मृत्यु 60 साल की उम्र में होगी, 50 साल की उम्र में होगी, 80 साल, ऐसा नहीं है। वसुदेव कहते हैं कि नहीं, मृत्युर्वै जन्मवताम वीर, हे वीर, जो जन्म लेने वालों की जो मृत्यु हो देह के साथ ही उत्पन्न हो गई है। अद्यवा शतान, अब आज चाहे हो जाए चाहे 100 साल बाद, मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवा, जब मनुष्यों की जो मृत्यु हो तो ध्रुव है, निश्चित है, पक्की है, होगी ही, कोई नहीं बचा सकता। देखो भगवान के भांजे थे अभिमन्यु, लेकिन भगवान ने नहीं बचाया, चाहते तो बचा लेते लेकिन नहीं, प्रारब्ध को भगवान भी किसी के हाथ नहीं लगाते हैं, वैसे किसी का भी नहीं लगाते हैं, जिसका जो होना होगा। लेकिन अपने गुरु पुत्र को बचाया, वहां प्रारब्ध का नाश किया, लेकिन अभिमन्यु वाले केस में नहीं किया। तो इस लेकिन वो लोग भी मरे, आए गुरुपुत्र भी आए कुछ समय बाद, वो भी चले गए, रहेंगे कोई नहीं यहां पर। इसीलिए मृत्यु शरीर के साथ ही उत्पन्न है, और कोई कहे कि हम 70-80 साल में मरते हैं, ऐसा नहीं है, हर क्षण मर रहे हैं, हर क्षण। आप यहां पर जितने बैठे हैं सब अधिकतर 40 साल के ऊपर वाले हैं, कुछ लोग होंगे कम। तो आप लोग अपनी 40 साल पुरानी जरा एक पिक्चर को देखिए, आपका जो छोटे बालक पने का जो शरीर है वो समाप्त हो गया, मर गया, नष्ट, नया मिल गया। वो तो हम साथ साथ रहते हैं तो हमको ज्ञान नहीं होता कि क्या मर रहा है, क्या बन रहा है, क्या नष्ट हो रहा है, लेकिन वो पुराना शरीर नष्ट हो गया। और फिर भी आप फोटो देखते हैं, अरे ये मेरी फोटो, ये तो मैं ही था ऐसा, अरे तुम ये हो कि तुम ये हो कि क्या हो पता ही नहीं, इसको भी कहते हुए मैं हूँ, इसको भी कहते हुए मैं, फोटो को भी देख करके व्यक्ति बड़े अभिमान से, देखो मेरी फोटो कैसी लगती है, मैं था ये, अरे तुम वो भी नहीं थे, तुम्हारा शरीर था जो वो भी नष्ट हो गया, कुछ जो बचा ये भी जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये मृत्यु की ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति को तत्व ज्ञान के पहले सभी को सजग हो जाना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए, और भक्ति में भक्तों का संग करके उसको लग जाना चाहिए। नहीं तो आप अनंत जन्मों तक सुनते रहेंगे कुछ नहीं होगा। कई बार सुन चुके हैं, पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं। आप वृंदावन में आए हैं या भागवत का श्रवण है, भागवत महात्म्य ही लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आपको पुनः भागवत की प्राप्ति हुई, इसका मतलब है आपको पूर्व में भी भागवत की प्राप्ति हुई। तो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यहीं तक ठहर जाती है कि निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं। खूब सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया लेक्चर हैं, ताली मार के सब चल देते हैं, लेकिन अब भजन करना है, भगवान की ओर जाना है, ऐसी बुद्धि और ऐसा निर्णय करते नहीं हैं। और इसीलिए फिर से भागवत सुनते हैं। कोई व्यक्ति 100 साल का, 1000 अनंत साल सुनता रहे, लेकिन यदि उसको सासंग भक्ति नहीं करेगा, सासंग मतलब महाप्रभु ने दो भक्ति बताई, एक सासंग एक अनासंग। सासंग माने मन से के साथ, माने मन में निश्चय करना कि भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं मेरा है। ये तो सब अभी 2-4 साल के हैं, अभी कभी भी चल बसेंगे। और एक होता है एक अनासंग व्यक्ति, जो केवल इंद्रियों से हाँ आए, सुने और उसके बाद फिर वापस अपने अपने कार्य में लग गए। तो इससे प्राप्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जो सुनता है यदि उसका मनन चिंतन नहीं करेगा तो निश्चय तक पहुंचेगा कैसे। इसलिए श्रवण के बाद जो मनन है, निधिध्यासन है, निश्चय तक कि अब भक्ति करना है। इसलिए भागवत के अंत में कहा है 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में कि श्रृणवन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे न रहा। सुनना है, पढ़ना भी है और विचार करना है। हाँ, मेरा केवल श्री कृष्ण से संबंध है और उनके भक्तों से, और किसी से नहीं। ये सब छल कपट कर रहे हैं बाकी लोग। ऐसा विचार करते हुए करना क्या है, तो भक्त्या, कहते हैं भक्ति जब करेगा तब वो मुक्त होगा। खूब सुन रहे हैं, कोई कहे कि भागवत तो सुन रहे हैं ना, कुछ तो हो ही जाएगा। क्या कुछ होगा, कुछ नहीं। आप यदि सुनकर के एक स्थिति तक नहीं आएंगे तो आपका श्रवण हत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई भी चीज हो। तो इसलिए भागवत का श्रवण केवल सुनना, एक भक्ति का मतलब आप समझते होंगे कि परीक्षित महाराज ने तो केवल सुना था, सुखदेव गोस्वामी ने तो केवल कीर्तन किया था, प्रहलाद ने तो केवल स्मरण किया था, ऐसा नहीं है। परीक्षित ने केवल श्रवण नहीं, श्रवण के साथ देखा, श्रवण किया, फिर भगवान बोला ना कि वासुदेव मनो, वासुदेव भगवान मन रख करके शरीर को छोड़ दूंगा, तो भगवान मतलब निश्चय कर लिया सुनने के बाद, और भगवान के मैं मन लगाया और मन लगा करके फिर बाद में शरीर को छोड़ा। तो श्रवण के ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज केवल श्रवण के आचार्य हैं, उन्होंने बढ़िया से सुना, सुनकर कि सुनना भक्ति का आचार्य तो हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर अपने स्मरण भी किया भगवान का और तब शरीर छोड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर पुरंजन के नाम से हम लोगों को जो उपदेश मिल रहा है कि हमारा भी शरीर इसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा, इसलिए जो हमारे परिवारजन या शरीर के जितने भी अंग, ये कोई भी काम में नहीं आएंगे, सबको नष्ट होना पड़ेगा। इसीलिए ये पुरंजन के माध्यम से नारद जी ने तत्व ज्ञान कराने का यहाँ पर प्रचेतस को प्रयास, प्राचीन बरही को प्रयास किया, और हमको भी एक निश्चित स्थिति में पहुंचना चाहिए। जब तक निर्णय की स्थिति नहीं आएगी तब तक सारा श्रवण हत के समान होगा। ये बार बार सुनते रहोगे और हम लोग सुनते रहेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जिस दिन निर्णय होगा उसी दिन भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे, और निर्णय नहीं हुआ, बीच बीच में है, तो उसका उतना ही फल रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।